इसीलिए बागे उम्मीद दिलाई, कायनात पे गौर व फिक्र करवाते हुए फरमाया, वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। आज भी उम्मत के साथ ऐसे ही है, कभी धमकियां मिलती हैं बाहर से और कभी अच्छी अच्छी खबरें मिलती हैं। ये उम्मत को जगाने के लिए, याद रखिए, जहां इस्लाम और मुसलमानों पे कोई हर्फ आया, ये उम्मत को जगाने के लिए था। उठो, वेक अप उम्मा, जागो और जगाओ। आज ये नारा लगाने की जरूरत, जागो और जगाओ, सुनो और सुनाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, छोड़ो सुस्तियां, बहुत आराम कर लिया, देखिए मुस्तकबिल बहुत रोशन है। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज जिसकी हम के साथ इसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते इसकी हैबत से लरजते हुए इसकी तस्बीह करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उससे लरजते हैं, हम क्यों नहीं लरजते? अल्लाह अकबर, हमें उसकी बड़ाई का एहसास नहीं है। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात इन्हें जिन पर चाहता है ऐन इस हालत में गिरा देता है, जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाकई इसकी चाल बड़ी जबरदस्त है, इसी को पुकारना बरहक है। रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो इनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। इन्हें पुकारना तो ऐसे है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर इससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह में पहुंच जा, हालांकि पानी इस तक पहुंचने वाला नहीं। देखिए, कभी बातों से कुछ नहीं हुआ, आप समंदर के पास खड़े होकर के पानी मुंह में आ जा, पानी मुंह में आ जा, नहीं आता ना। इसी तरह याद रखिए, बातों से कुछ नहीं होता, इसीलिए आपको आज टाइम वेस्टर दिए। ये मत कहें कि मुसलमान क्या नहीं कर सकते, ये मत कि मैं क्या नहीं कर सकती, इतने वक्त और इस एनर्जी को कुछ करने में लगा लें। आज हम कहते हैं कुछ नहीं, बस कोई मौजज़ा ही होगा, पता नहीं उम्मत ने नहीं बदलना, ये नहीं होना। नहीं, आप कहिए कि अल्लाह तू कर और हमसे करा। और इसके बाद अब आगे वो आयत है जो आपकी मेरी इस बारे की आयत तदब्बुर है, फरमाया, बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं मगर एक तीरे वे हदफ, वो तो अल्लाह ही है जिसको आसमान और जमीन की हर चीज तौन कर खान यानी खुशी से या नाखुशी से सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए सुबह शाम इसी के आगे झुक रहे हैं। इनसे पूछो आसमानों जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब हकीकत ये है तो क्या तुम इसको छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज ठहरा रहे हो जो खुद अपने लिए भी किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते? कहो कि अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है, बताइए नहीं? क्या रोशनी और तारीकियां यकसां हो सकती हैं? और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है और इसकी वजह से इन पर तख्लीक का मामला मुश्तबे हो गया? कहो, हर चीज का खालिक सिर्फ एक अल्लाह है, वो यकता है और सब पर गालिब है। तो क्या करो, उस पर नजरें लगा दो। अब है आयत हमारे सामने और अल्लाह ताला हमें इस पे गौर करने वाला बना दे। अनजला मिनस समा ईमान फसालत औदियतुम बिकदरिहा, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने जर्फ के मुताबिक इसे लेकर चल निकला। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गया, और ऐसे ही झाग इन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाजे करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है, और जो चीज लोगों के लिए नफा देने वाली है वो जमीन में ठहर जाती है। इसी तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। क्या समझाया आपको मुझे अल्लाह ने? असल में यहाँ एक नए ईमान और एक पुराने ईमान का तकाबुल है। नया ईमान जोश वाला होता है, बहुत ज्यादा उसमें जोश और खरोश होता है। कभी आपने नदी नालों को देखा होगा, एक जोश के साथ पानी गिरता है, नीचे झाग होती है, एक हलचल होती है, शोर भी होता है, आवाज भी होती है। यूथ के अंदर ये जोश होता है, न्यू मुस्लिम्स के अंदर ये जोश होता है। जो बोन मुस्लिम होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाते हैं। शुरू से जो नमाज रोजा हज कहते रहे, तो अब क्या बड़ी बात है, शुरू से नमाजें कभी पढ़ी कभी छोड़ी, तो अब छोड़ भी दे तो क्या हुआ? इसके बरक्स नया ईमान उसको कबूल करना चाहिए। इस वक्त कुरान मुझे आपको भी एक ईमान दे रहा है, आपका अभी बाहर नहीं अंदर दिखेगा, अभी आपकी तब्दीलियां बाहर वालों को नहीं दिखेंगी, लेकिन मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक उत्थल पुथल तो शुरू हो गई है। किस किस के अंदर हुई है, हाथ तो खड़े करें। अल्हम्दुलिल्लाह, फीडबैक हमें आता है, चारों तरफ से आता है। कुछ साथी बेहतर, कल भी मैं किसी का पढ़ रही थी तो यही कह रही थी कि उनकी जिंदगी का ये पहला दौरा कुरान है, और जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ था तो बस मेरा तो सर सजदों में ही जाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं पढ़ाते हुए कि किसी को इतना भी फायदा होगा। फिर किसी ने सूरह यूसुफ के बारे में कहा, मैंने जिंदगी में पहली दफा सूरह यूसुफ ऐसे समझी है जैसे कि मैं अब समझ रही हूँ। क्यों? कि ये आपके अंदर एक हलचल आ रही है, अब करना क्या है, इसको जमा कर लें, इसको ना जाने दें, जब नया ईमान एनर्जी दे ना कुछ कर लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है ना, अब चला लीजिए वरना खड़ी गाड़ी का सारा गिर जाएगा या धुआं बन के उड़ जाएगा, बाकी रहेगी बाहर की मुखालफतें, अल्लाह कहते हैं ये झाग है। यकीन कीजिए ये जितना इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगंडा है ये सिर्फ झाग है, बाहर लगता है पानी के ऊपर आ गया है, ऐसे हाथ फैलाएं। कभी आपने दूध के ऊपर झाग देखी है ना, ऐसे हाथ से हिलाएं, पीछे नीचे साफ दूध है, हक निथरा होता है, हक तय में है, ये ऊपर सिर्फ ऊपर एक शोशा है, नेगेटिव दीन और लाइक बेदीनी बुराई करप्शन ये ऊपर है, सिर्फ वो हाथ चाहिए आपको मुझे। इस आयत की इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, बहुत ही इसमें डिफरेंट मिसालों से हमने इस चीज को डिटेल में समझा हुआ है कि हमें करना क्या है। आपके मेरे लिए इसमें जो नुक्ता काबिले गौर है वो क्या है, वम ममायन फो ना सफयम कुस, लोगों को नफा दें, फितरत का असूल है वही चीज बचती है जो नफा देती है। आपके किचन के काउंटर पे कौन सी मशीनें रखी होती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन नहीं तो हफ्ते में एक दो बार तो इस्तेमाल करते हैं ना, वो चीज़ जो इस्तेमाल ना हो ऐसा ऐसा किधर जाती है, पहले अलमारी के अंदर जाती है, फिर जब वहाँ भी जगह ना रहे तो उठा के क्लोज़ेट में, और फिर किसी सालाना सफाई में उठाकर उसको किसी को दे देंगे। अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को नफ़ा देने वाली उम्मत बनाया था, उखरिजत लिन्नास, अब उम्मत ने काम छोड़ा, अल्लाह ने इसको ऐसे ठुड्डों में डाल दिया, दूसरे लोग आगे आगे, आपने मैंने नफ़ा देना है। और इंसानियत को नफ़ा देने वाली हज़ारों चीज़ें हैं, सबसे बेहतर चीज़ लोगों को हिदायत दिलवाने का ज़रिया बन जाए। मैं दे नहीं सकती हिदायत, आप दे नहीं सकती, हम हिदायत की तरफ लोगों के कदम बढ़ाने वाले हैं, लेकिन हमारा हाल यह है कि लोग हमें कुछ भी कहें लेकिन हम मस्त हैं, हम अपनी पार्टीज़ अपने फेशियल अपने खाने अपने पीनों में इतने मगन हैं कि हमें ये परवाह ही नहीं कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे ऊपर रखी थी। आज हर चीज़ का वक्त है, इल्म हासिल करने का वक्त नहीं। रात 4-4 बजे तक महफिलों में शादियों में मेहंदियों में उठ उठ के बैठते हैं, कदर नहीं है तो इल्म के लिए नहीं है। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे, हमारी सुस्तियों को दूर कर दे। आज हमारा हर निज़ाम ढीला क्यों है, सुस्ती और काहली क्यों आ चुकी, क्या मुसलमान होने का मतलब डिसऑर्गनाइज होना, मुसलमान मुल्क का मतलब गंदा होना, वहाँ हर चीज़ ही टेढ़ी मेढ़ी हो, नहीं, असल बात यह है कि हमारे अंदर शऊर नहीं, अल्लाह ताला हमें ये अता कर दे। हाँ फिर इसके बाद जब आपने सोच लिया तो अल्लाह ने आपकी देखे फौरन तारीफ भी कर दी, लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम अल-हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली इनके लिए भलाई है। किस किस ने कबूल करने की नियत की है, अल्लाह ताला हम सबको कबूल करने वाला बना दे, और जिन्होंने इसे कबूल ना किया और अगर सारी दुनिया की दौलत के मालिक भी हों और उतनी ही और फराहम कर लें तो वो अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इन सब को फिदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे, ये वो लोग हैं जिनसे बुरा हिसाब लिया जाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह महासिब ना हिसाब यसीरा, अल्लाह बुरे हिसाब से बचाना, और इनका ठिकाना जहन्नुम है और बहुत ही बुरा ठिकाना। भला ये किस तरह मुमकिन है, वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो इसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाए। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, अल्लाह हमें दानिशमंद बना दे। कौन होते हैं अब उनकी डिस्क्रिप्शन, अल्लज़ीना युफून बिअहदिल्लाह, वो लोग हैं इनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, इसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। इनकी रविश ये होती है कि जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है इन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कहीं इनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। मुहासबा करें हम सब, क्या मुझे बुरे हिसाब का खदशा है। इनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र करते हैं। सब्र तो आपने हमेशा ही पढ़ा है कुरान में, पीछे कई दफा गुजरा, यहाँ एक अजीब एंगल है, इसको जरा सा देखिए, इब्तिगा वजहे रब्बिहिम, ये रब के लिए सब्र करना क्या होता है, इज्तमाई कामों का सब्र। जब बंदे को सब्र करना मुश्किल लगे तो सब्र करें। याद रखिए अकेले दीन पे चलना बहुत आसान है, शर्त यह कि हमारा किसी से इंट्रैक्शन ना हो, लेकिन ऐसे लोगों में रहना जो खुद दीन पे नहीं चल रहे उनके बीच में रहना बड़ा सब्र चाहता है। अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें सब्र दे, और सब्र एक करंसी है जिससे जन्नत खरीदी जाएगी। अफसोस कहे कि नॉन मुस्लिम को गम होता है तो वो लीकर शॉप की तरफ जाता है, मुसलमान को गम होता है तो वो जिक्र शॉपिंग की तरफ जाता है। सब्र कहाँ से आएगा जितना कुरान आपकी मेरी जिंदगी में आएगा। अल्लाह हमें साबिर बना दे। फिर जब सब्र होगा तो वका मुसला नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दूर करते हैं। आखरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है। अल्लाह हमें भी ये घर दे दे। यानी ऐसे बाग जो इनकी अब्दी क्यामगाह होंगे वो खुद भी इनमें दाखिल होंगे और इनके अबाओ अजदाद और इनकी बीवियों और इनकी औलाद में से जो सवाले हैं वो भी इनके साथ वहां जाएंगे। दुआ करें इस वक्त आप अपने शोहरों और बच्चों के लिए कि अल्लाह हमें हमारे बच्चों और हमारे शोहरों के साथ जन्नतों में दाखिल कराना, और अगर हम में से किसी में कोई कमी बेची है अल्लाह उसकी दूर करके हम सबको एक दर्जे पे कर दे। मलाइका हर तरफ से उनके लिए इस्तकबाल के लिए आएंगे। इमेजिन करें बड़े खूबसूरत हॉल में दाखिल हो रहे हैं और दरवाजे पे लोग फूलों के गुलदस्ते पकड़कर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, और उनसे कहेंगे तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया। ये कौन सा सब्र है? दीन पे जमने का सब्र, दूसरों को साथ लेकर चलने का सब्र, नेगेटिविटी पे सब्र, खिलाफे तबा बात सुन के सब्र किया। इसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। बस क्या ही खूब है ये आखरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो इन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो जमीन में फसाद फैलाते हैं वो लानत के मुस्तहिक हैं, और इनके लिए आखरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह मला तचलना मिन हो, अल्लाह हमें कभी ऐसे लोगों में शामिल ना करे। अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराखी बख्शता है और जिसे चाहता है नपा तुला रिस्क देता है। यानी किसी माल वाले पे रश्क ना करो और किसी गरीब पे रहम ना करो, ये अल्लाह का फैसला है। जिसको अल्लाह ने जितना आजमाना चाहा और जिसे चाहता है नपा तुला रिस्क देता है, ये लोग दुनियावी जिंदगी में मगन है। हसबा मैं कितनी को मगन हूँ दुनिया की जिंदगी में, कितने गम दुनिया के और कितने आखरत के, कितनी भागदौड़ दुनिया के लिए और कितनी आखरत के लिए। हालांकि दुनिया की जिंदगी आखरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। ये लोग जिन्होंने रिसालत मुहम्मदी को मानने से इनकार कर दिया कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो इसकी तरफ रजू करे। आपकी तारीफें हैं अल्लाह, आपके ये बढ़ते हुए कदम आगे ही रखे, कभी पीछे ना करे। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और इनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। कितनी प्यारी याद है, पता नहीं किस जालिम ने पहली दफा ये जुमला बोला कि म्यूजिक इज फूड ऑफ सोल, कुरान इज फूड ऑफ सोल। कितनों को यहां बैठ के लगता है कि कुरान मेरी रूह की ग़िज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वाकई म्यूजिक होता ना रूह की गजा तो खुदकुशी क्यों करते फिर वो लोग? दूसरों को हंसाने वाले खुद क्यों रोते? असल बात यह है कि हमने ये इत्मीनान चखा ही नहीं। अल्लाह हमें चखा दे। खबरदार रहो, अल्लाह ही की याद वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब है और इनके लिए अच्छा इंजाम है। ऐ नबी इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया। दुआ कीजिए हम भी दूसरों को सुनाने वाले बन जाएं। इस हाल में कि ये अपने नहायत मेहरबान खुदा के काफिर बने हुए हैं, इसको हाईलाइट करें, जुमले का दर्द महसूस करें, नहायत मेहरबान खुदा के काफिर। ऐसे जैसे बड़ी प्यारी माँ है और बच्चा उसकी कदर नहीं करता। इनसे कहो वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मल जाओ मावा है। यानी जिसके आगे मैं इल्तजा कर सकती हूँ, जिसकी तरफ मैं पलट सकता हूँ। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकल कर बोलने लगते। लोग कुरान से इसी किस्म के मौजज़े चाहते थे। अल्लाह कहता है कोई मुश्किल नहीं है, इसी तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के जहूर की आस लगाए बैठे हैं? और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफर का रवैया इख्तियार कर रखा है, इन पर इनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है, या इनके घर के करीब कहीं नाजिल होती रहती है। कुछ अरसे के बाद सुन लेते हैं ना कोई तूफान, कोई सैलाब। असल में ये भी डरावे का एक अंदाज होता है कि अपने आप को सीधा कर लो। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा पूरा होगा। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी। कौन कह रहा है? मैंने, अल्लाह ने। तो अल्लाह की पकड़ से डरने की जरूरत है। और आखिरकार इनको पकड़ लिया, फिर देख लो मेरी सजा कैसी सख्त थी। अब यहाँ अल्लाह ताला की मौजूदगी को महसूस कीजिए। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफ़िस की कमाई पर नजर रखता, इसके मुकाबले में जसारतें की जा रही हैं? लोगों ने इसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं, है कोई शिर्क की दलील? ऐ नबी, इनसे कहो अगर वाकई वो अल्लाह के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो जरा इनके नाम लो कि वो हैं कौन। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता, या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? हकीकत यह है कि जिन लोगों ने दावत हक को मानने से इनकार किया है, इनके लिए इनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गईं और वो राह रास्त से रोक दिए गए। फिर जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे, इसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। या अल्लाह हमें गुमराह होने से बचा ले। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी ही में अजाब है और आखरत का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं जो इनको अल्लाह से बचाने वाला हो। इसके बरक्स खुदा तर्स इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, इसकी शान यह है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसके फल दायमी और इसका साया लाजवाल। ये इंजाम है मुत्तकी लोगों का, और मुनकरीन हक का इंजाम यह है कि इनके लिए दोजख की आग है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। ऐ नबी, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो इस किताब से जो हमने आप पर नाजिल की है खुश हैं, और मुख्तलिफ गिरोहों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनकी बात बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो मुझे तो सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया और इससे मना किया गया कि किसी को इसके साथ शरीक ठहराऊं, लिहाजा मैं इसी की तरफ दावत देता हूँ और इसी की तरफ मेरा रुजू है। आप जो सूरतें देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इन सूरतों के एंड में बिल्कुल यही अंदाज है। हमने पीछे खूत में भी देखा, यूसुफ में भी देखा, अब यहाँ भी ये है। इसी हिदायत के साथ हमने ये फरमान अरबी तुम पर नासिल किया। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई तुम्हारा हामी मददगार है और ना कोई इसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। तो क्या नहीं करना? ख्वाहिश की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करनी है। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके, इनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था, और किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर कोई निशानी खुद ला दिखाता। यानी नबियों के पास भी दुनिया के तकाजे थे, खाते थे, पीते थे, बीवियां थी, बच्चे थे। हमारा दीन रहमानियत नहीं सिखाता। पता नहीं कहाँ से ये भी दीन के अंदर एक चीज दाखिल हो गई कि जहां दुनिया का कोई तकाजा आया, समझ लिया कि ये दीन से दूर है। हालांकि आप देखिए, अगर एक मर्द कमाता है तो क्या इबादत नहीं है? अलकासिबु हबीबुल्लाह पे नहीं हुआ था? एक शौहर अपनी बीवी की देखभाल करता है, क्या उसको अजर नहीं है? लेकिन पता नहीं क्यों हमने मस्जिद और मुल्ला को साथ कर दिया और नौजुबिल्ला ऐसे ऐसे बेहूदा जुमले बोल दिए कि लोग दीन वाला बनते भी शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। हर दौर के लिए एक किताब है। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज़ को चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब उसी के पास है, यह है लोहे महफूज तकदीर। अल्लाह ने हमारी तकदीरें दो हिस्सों में बांटी हुई हैं, कुछ बदल सकती हैं कुछ नहीं। जो नहीं बदल सकती उसको कबूल कीजिए, और जो बदल सकती है उसके लिए दुआ और कोशिश कीजिए। कई अमाल हदीस से पता चलते हैं कि जो इंसान की तकदीर को बदलते हैं, मसलन सिला रहमी रिस्क में वसूत का जरिया, उम्र में बरकत आती है, अल्लाह छोटी उम्र को लंबा करता है, और हदीस में तो कोई चीज़ बला को नहीं टाल सकती सिवाय दुआ के। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी तकदीरों के बुरे लिखे को भले में बदल दें और जो भला लिखे उसको कायम रखे। हज़रत उमर से एक दुआ मनकूल है जिसमें यह अंदाज़ मिलता है कि अल्लाह तू मेरी बुरी तकदीर को मिटा दे और अच्छी बात को रख ले, क्योंकि तेरे पास किताब है, तू जब चाहे उसमें जाके तब्दीली कर दे। और ए नबी, जिस बुरे इंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं, इसका कोई हिस्सा ख्वाह हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें या इसके हजूर में आने से पहले हम तुम्हें उठा लें, बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। मत मनवाने की कोशिशें करें, दूसरे को बताएं, खुद से मनवाएं। हम क्या कहते हैं, दूसरों को बताएंगे, मनवाएंगे उनसे, डंडे के जोर पे मनवाएंगे? नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। क्या ये लोग देखते नहीं कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते आ रहे हैं? इस एक आयत पे बहुत सारी तफसीरें हैं, जिसमें एक ये भी है कि दिन ब दिन दुनिया में इस्लाम नाफिज हो रहा है और कुफर का गलबा कम होता जा रहा है। अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई इसके फैसलों पर नजरेसानी करने वाला नहीं। इसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है, और अन करीब ये मुनकरीने हक देख लेंगे कि अंजाम किसका बखैर होता है। ये मुनकरीन कहते हैं, तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो। कहो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है और फिर इस शख्स की गवाही जो किताबे आसमानी का इल्म रखता है। क्या पता चला कि सूरत रात ने आपको मुझे एक सोच दी, और वो क्या है, जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा। और ये बता दिया कि हक और बातिल की जंग जब भी हुई, आखिरी फतह हक की हुई। आपने, मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमें हक के रास्ते में खपा ले, हक के रास्ते पे चला ले। आज इतना ही काफी है। अल्लाह ताला से ये बहुत दुआ है कि वो हमें एक-एक लफ्ज पे अमल की तौफीक दे, कहे सुने बोले बुलाए पर अमल वाला बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। मैं चाहती हूँ जो भी हमने आयतें पढ़ी है ना, इसी में से अगर कुछ सुन सके तो आप एक ऐसी तासीर लेकर यहां से उठें और कोशिश किया करें कि गाड़ी में बैठने तक कोई बात ना करें, बल्कि गाड़ी में भी बेकार बातें ना करें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब, दिलों को अल्लाह की याद से सुकून मिलता है, तो जुबान को हमेशा जिक्र से तार रखा करें। इंशाल्लाह बहुत सारी गलत बातों का जवाब देने से वैसे ही बच जाएंगे क्योंकि आप जिक्र में मसरूफ हैं। आइए सुनते हैं।
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب